आखिरी जो निचोड़ है, सहार है, वो थोड़ा सा हमें दिला दे, थोड़ा सा
सार तो यही है कि आत्मा को मतलब आत्मा परमात्मा की एकता, आत्मा और ब्रह्म की एकता, और आत्मा और ब्रह्म की एकता का वो एक मतलब साधन है ना, तत् से भाव ईश्वर, तम से भाव जीवात्मा, जीव,
जीव।
हाँ उसके दो अर्थ है ना, तत् के दो अर्थ हैं, वाच्य अर्थ है ईश्वर और लक्ष्य अर्थ है ब्रह्म, और त्वम के दो अर्थ हैं, वाच्य अर्थ है जीव और लक्ष्य अर्थ है आत्मा, साक्षी, साक्षी, साक्षी और ब्रह्म की एकता होती है, जीव और ईश्वर नहीं हो सकती, ईश्वर भी मिथ्या जीव भी मिथ्या, ये दोनों माया के कारण है, ईश्वर भी सत्य नहीं है, जीव भी सत्य नहीं है, और साक्षी और ब्रह्म दोनों सत्य हैं, उनके द्वारा हमारा ऐक्य हो सकता, हम अपने आप को साक्षी पहले निश्चित करें तब हमारा ब्रह्म से अभेद हो सकता है, यदि हम अपने आप को जीव मान के ब्रह्म से ऐक्य होना चाहेंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीव जो है उपाधि वाला है, उपाधि से युक्त को जीव कहते हैं, उसमें जो धर्म है उसके धर्म अलग हैं, ईश्वर के धर्म अलग हैं, इसलिए उनकी विरोधता है, एक नहीं हो सकते, इसलिए अपना जीवपना छोड़ेंगे, उसका ईश्वरपना छोड़ेंगे, अपने आप को साक्षी मानेंगे, उसको ब्रह्म मानेंगे, तो साक्षी और ब्रह्म दोनों एक हैं, हो जाएंगे, यही सार है उसका कि अपने आप को पहले दृष्टा साक्षी मानो, अपने आप का साक्षी रूप में सिद्ध हो जाएंगे, हम साक्षी हैं, ना हम शरीर हैं, ना हम स्थूल शरीर हैं, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ना हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी नहीं आते हैं, तीन अवस कोश मतलब शरीरों से परे हैं, पांच कोशों से परे हैं, यह पूरा निश्चय हो जाए, जब शरीर से हमारी आसक्ति छूट जाए, इंद्रियों से छूट जाए, तभी हम अपने आप से साक्षी मानेंगे ना, जब हम साक्षी हो गए तो ब्रह्म तो हो ही जाएंगे, साक्षी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, पहले तो बस ये विचार, ये होता विचार से ही है, जब तक अविवेक है तब तक ये नहीं हो सकता, हम अपने आप को साक्षी नहीं मान सकते,
सहजता में आना,
हाँ वही सहजता तभी आएगी ना, जब मतलब जैसे हम सहजता मतलब तभी आएगी, शांति तभी आएगी जब हमारा मन एकाग्र होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, जब शुद्धि हो जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी, तब हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके बाद में जिज्ञासा होती है उत्पन्न मुक्त होने की, तो जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उस जिज्ञासा की पूर्ति होना ही ब्रह्म ज्ञान है, जब हमारे को मोक्ष की इच्छा हुई तो मोक्ष इच्छा का पूर्ण होना ही हमारा साक्षात्कार है, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मोक्ष की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, उसकी पूर्ति है मतलब साक्षात्कार होना, जिज्ञासा मिटने का मतलब है कि हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, तो जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं अभी तो हो रही, पूर्णता तभी होगी जब उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं हो रही, कभी थोड़ी देर के लिए आदमी थोड़ा सा होता है, दुखी होता है तो थोड़ी देर के लिए क्षण मात्र के लिए थोड़ा सा इच्छा करता है, उसके बाद में फिर वहीं फंस जाता है, तो जब तीव्र इच्छा उसको होगी उस इच्छा की पूर्ति के लिए गुरु के पास जाएगा, तो जब गुरुओं के चरण में जाएगा तो कृपा अपने आप बरस जाएगी, फिर पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो तभी है ना, जिज्ञासा ही कहते हैं कि हरिओम, जिज्ञासा ही हजारों में से किसी किसी को होती है, हजारों में से कोई एक होते हैं जिनको जिज्ञासा होती है, तो उन जिज्ञासा करने वाले में से भी कोई कोई प्रयत्न करने में किन्हीं की प्रवृत्ति होती है, और प्रयत्न करने वाले में से भी किसी एक ही जो है उसको सिद्धि प्राप्त होती, सबको नहीं होती, इसलिए ये जो स्वरूप की प्राप्ति है ना उसके लिए ही सारे साधन बतलाए गए हैं, आठ साधन बतलाए हैं ना, तो उसमें से तत्त्वम का संशोधन जो है वो भी एक साधन है, आठ साधनों में तो तत्त्वम का संशोधन का यही है कि उसको लक्षणा से जाना जाता है, वैसे नहीं समझ में आता, जब लक्षणा से उसका विचार करेंगे तब तत्त्वम का संशोधन होगा। यही कल बात चली थी। उसके बाद में आया था कि जो ज्ञानी होता है ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति कैसे होती है, यह भी प्रकरण चला था। जब ज्ञानी हो जाता है तो क्या वो कर्म करना छोड़ देता है? क्या कर्म करना छोड़ता नहीं है? वो करता हुए अकर्ता हो जाता है, फल की इच्छा छोड़ देता है वो। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं सुख दुख जे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। उसको ज्ञानी कहा है गुरु महाराज जी ने। सुख दुख जे परसै नहीं, सुख और दुख किसका धर्म है? अंतःकरण का। अंतःकरण के जो धर्म है ना, जब अंतःकरण की उपाधि को छोड़ देता है तो परसै नहीं, स्पर्श नहीं करते। क्रियमाण कर्म की बात आ गई, यहां देखिए क्रियमाण जो कर्म है, जो कर्म कर रहा है ना उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे जो कमल का पत्र होता है, कमल होता है, पानी में रहते हुए पानी उसको स्पर्श नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ऐसे ही गुरु महाराज जी कहते हैं उसका नाम ज्ञानी है। सुख दुख जे परसै नहीं, जिसको सुख दुख स्पर्श भी नहीं करते। कोट मध्य को ऐसा अपर्स, कोई कोई है ना करोड़ों में से, कोई कोई है, हरेक नहीं है। इसलिए कहते हैं भी सुख दुख उसको स्पर्श नहीं करता। और क्या नहीं करता? लोभ मोह अभिमान, ये सभी उसको स्पर्श ही नहीं करते। उसके अंदर आने की तो दूर की बात है, कैसे स्पर्श भी नहीं करते, उसके साथ स्पर्श भी नहीं होता इनका। क्यों ऐसा होता है? कि प्राप्त की आज्ञा आत्महितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे। जो प्रभु की आज्ञा है ना, प्रभु का जो भाणा है, प्रभु की जो रजा है, उसके अंदर रहना सीख लेता है, जीना सीख लेता है, जो जीवन मुक्त हो जाता है वो। तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। उसको हर्ष भी और शोक भी, ये हर्ष शोक भी किसका धर्म है? अंतःकरण का। तो अंतःकरण से उसकी शक्ति छूट गई ना, अहंता ममता से वो दूर हो गया। अंतःकरण का मतलब सूक्ष्म शरीर से परे हो गया वो। उसने समझ लिया कि मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, उसने अपने आप को साक्षी मान लिया। इसीलिए तैसा हरक तैसा उस सोग, उसी को होता है ना, जो साक्षी बन जाता है उसी को ऐसा होता है। हर्ष को भी वो देखता है, शोक को भी वो देखता है। हर्ष शोक उसको स्पर्श नहीं करते, केवल उनका दृष्टा हो जाता है। इसलिए देखने वाले को अंतर नहीं पड़ता। जो केवल देखता है ना उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन देखने वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे सूर्य है ना, सूर्य किसी के दुखी होने से दुखी नहीं होता, किसी के सुखी होने से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जैसा रहता है, जैसा है। तो दृष्टा जो होता है, दृष्टा को अंतर नहीं पड़ता। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है केवल वो देखता रहता है उसके सामने। पहले भी हमने कई बार विचार किया कि तैसा हरक तैसा उस सोग, भाई भिखारी जी को लड़के की शादी करने से खुशी नहीं हुई। वही लड़का रात को मर गया भाई भिखारी का, तो दूसरे दिन अपने हाथ से उसका संस्कार किया तो शोक नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञानी थे ना वो, प्रभु की आज्ञा आत्महिता है, प्रभु की आज्ञा उन्होंने मान लिया कि ये प्रभु की रजा है, तो अपने हाथ से लड़के की शादी की है। उसी रात को लड़का मर गया। दूसरे दिन पहले कफन भी अपने हाथ से बना के रखा था, सुई से सिल के रखा हुआ था, ब्याह करने से पहले, शादी करने से पहले अपने हाथ से कफन बनाया हुआ था। और जो लोग मर, जो शोक करने आएंगे उनके नीचे बिछाने के लिए तपड़ी बना रखी पहले से अपने हाथ से, तब शादी की है लड़के की। पहले मालूम था ना उनको कि इसके कफन भी जो ऊपर डालना है और लोगों को आएंगे तो उनके नीचे जो भी बिछाना है, तो पहले बना के रखा अपने हाथ से। एक सीढ़ी भी साइड में रखी हुई है जिसके ऊपर लटा के ले जाते हैं, वो भी पहले रखी हुई है, तब शादी की है। रात को लड़का मर गया, दूसरे दिन उसको बड़े प्रेम से लेकर के उसका संस्कार किया है। तभी पूछा सीखने की, ये क्या बात है भाई साहब, आपको मालूम था जब तो आप इसकी शादी ना करते, नहीं तो गुरु महाराज से कह करके इसकी उम्र बढ़ा लेते, आपको मालूम था ना इसने मर जाना है। वो कहते हैं यही तो बात है, इसलिए तो आपको महाराज ने यहां भेजा है कि ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, तैसा हरक तैसा सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, वहां वियोग होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है उसके हृदय में, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख, उसको वैसा ही अमृत है वैसी बिख है, तैसा बिख तैसा अमृत, एक ही जैसा उसको होता है, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत। वो कहते जैसी मतलब प्रभु की रजा होती उसी में आनंद रहता है वो जीवन, उसको कहते हैं नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, उसी पुरख को जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्त जो हो जाता है ना, उसके कर्म जो है उसको स्पर्श ही नहीं करते, क्रियामाण उसको स्पर्श नहीं करते, और जो संचित कर्म होते हैं उसकी ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। जो पिछले पीछे वाले जो संचित मतलब इकट्ठे किए हुए है ना, तो जैसे ईंदम कीतो मूकना भोरी दित्ती मो पाहे, बहुत बड़ा ढेर लगा दो लकड़ियों का, एक छोटी सी अंगारी लगाने से उसी समय भस्म हो जाता है, इतनी बड़ी आग नहीं लगानी पड़ती, एक चंगारी जो है ढेर को भस्म कर देती है। उसी प्रकार कहते हैं भगवान की जब ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है ना, तो जितने संचित कर्म होते हैं जन्म जन्मांतरों के ढेर पड़े होते हैं, एक ही बार दग्ध कर्माणी उसी समय दग्ध हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्म जो हैं वो भोगने से नष्ट हो जाते हैं, तो उसका कर्म कोई नहीं बचता, प्रारब्ध भी नहीं बचते उसके, संचित भी नहीं बचते, और क्रियामान जो कर्म है, फिर कहते हैं क्रियामान कर्म का उसको फल नहीं मिलता, तो फल किसको मिलता है, करता तो रहता है ना, जब तक उसका शरीर नहीं छूटता भले उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, कर्म तो करता ही रहता है ना, उसका फल फिर किसको मिलता है, उसको तो मिलता नहीं है, तो फल तो कर्म जब करेगा किसी ना किसी को मिलेगा, वो हर्ष भी करता है शोक भी करता है, भले उसको स्पर्श नहीं करते लेकिन होता तो है ना जब तक शरीर है। तो कहते हैं उसके जो कर्मों जो पुण्य कर्म है ना उसका फल ले जाते उसकी सेवा करने वाले, जो उसके सुहृद होते हैं ना, जो उसके प्रेमी होते हैं, जो उसके लिए जो उसको मानते हैं वो ले जाते हैं पुण्य कर्म का फल, और जो उससे उसके जीवन में रहते हुए उसके ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उससे पाप हो जाता है, कई बार कई पाप हो जाते हैं, उसका फल किसको मिलता है, निंदकों को, जो उसकी निंदा करते हैं ना, फल तो मिलेगा किसी ना किसी को कर्म करने से, उसके पुण्य कर्मों का फल उसके प्रेमी उनको मिलता, सेवा करने वालों को उसको मानने वाले को, और निंदा जो निंदा करने वाले उसको पुण्य पाप जितने उसके वो करता है ना उससे हो जाते हैं जीवन में ना, वो सब ले जाते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ती उसको, अपने आप ही मिल जाता है, निंदक जो निंदा करने वाले हैं उनको मिलता है। इसलिए सबसे जो मतलब माड़ी हालत निंदक की होती है, वो कहते हैं निंदक को मजदूरी नहीं देनी पड़ती, जैसे बिना मजदूरी के कोई भार उठाता ना किसी का, ऐसे निंदक की हालत होती है, वो बिना मजदूरी के किसी का भार उठा रहा है, जितनी निंदा करेगा उतने उसके पाप कम होते हैं ना, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, सबसे बुरी जो है निंदा है, निंदक को अपने आप ही फल मिलता जाता है दूसरे के कर्मों का, अपना तो उठा ही रहा है, इसलिए कहते हैं कि निंदक जो है ना उसका जन्म इसलिए व्यर्थ हो जाता है, इसलिए निंदा भली किसे की ना ही। गुरु महाराज ने तो यहां तक कह दिया, ब्रह्म ज्ञानी की तो बात ही छोड़ो, वो कहते हैं किसी की भी निंदा अच्छी नहीं है, जो करते हैं मनमुख मुग्ध कराना, जो मनमुख है ना, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, वो निंदा करते हैं, उनकी हालत क्या होती है, मोह काले इतने निंदका नरके घोर पवन, उन निंदकों के मुंह काले होते हैं, घोर नरक में उनको गिरा जाता है, वही मुंह काले करके जो निंदा करते हैं, किसी की भी करते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की तो बात ही क्या है, वो तो संत की निंदा का तो आपने पढ़ ही रखा है कि संत की निंदा करने वाला का तो बचता ही कुछ नहीं है, वो तो ना मरे ना जीवावे कुछ भी हालत नहीं होती उसकी, तो कहना ही क्या है, वो तो कभी छूट ही नहीं सकता, जो निंदे तिसका पतन होए, गुरु महाराज कहते हैं प्रभु की निंदा करो ना कोए, जो निंदे तिसका पतन होए, पतन हो जाता है, गिर जाता है वो जो निंदा करता है। इसलिए बात ये आ गई कि जो उसके पुण्य और पाप कर्म होते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी के, पुण्य का कर्म भक्त लोग ले जाते हैं और पाप का जो फल है वो निंदक ले जाते हैं, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको किसी कर्म का कोई फल नहीं मिलता, वो तो जीवन मुक्त हो गया है, जीता हुआ मुक्त है, जी रहा है प्रारब्ध के बल से है मुक्त। तो जीवन मुक्त हो जाते हैं जब ज्ञानी, तो उनको तीनों प्रकार के उनके कर्म मिट जाते हैं। ये कल विचार हमने किया था, इसलिए मतलब अपना चिंतन करने के लिए गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जा करके ही हमारे को रास्ता मिल सकता है। कर्म वैसे किसको कहते हैं, याद है आपको मालूम है कर्म किसको कहते हैं, कर्म की फिलॉसफी क्या है, कर्म की परिभाषा किसको कर्म कहते हैं, आप तो सुनते रहते ना सब लोग, कर्म का समझा के कर्म किसको कहते हैं,
कर्म ये काम करते हैं।
हाँ
वही कर्म है।
हाँ तो कर्म तो है पर
कर्म,
हाँ जी
कार्य व्यवहार करते हैं।
हाँ
वो कर्म ही है।
हाँ व्यवहार जो जिसको किया जाए उसको कर्म कहते हैं, और कर्म तीन प्रकार से किया जाता है, ये भी तो बात है, कायिक वाचक और मानसिक, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, शरीर से मन से और वाणी से, तो तीनों प्रकार के कर्मों से छूटना पड़ता है एक कर्म के, नहीं केवल ये नहीं कि ऐसे आप समाधि लगा के बैठ गए तो कहेंगे कि भी अब हम कर्म नहीं करते, लेकिन मन तो आपका वही घूम रहा है ना, भले समाधि ला के बैठ जाते हम लोग लेकिन मन तो पूरे संसार का चक्कर लगाता रहता ना, जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो मन जो है पता नहीं कितने लोगों की हिंसा करता है, बैठा 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 करता है कि नहीं, उसका ये हो जाए उसका ये हो जाए उसका ये हो जाए करता रहता है, उसको क्या पता है, आप तो हाथ से बैठे हैं ना समाधि लगा के, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो वहां बैठा भी निंदा करता ही रहता है, वहां बैठा बुरा सोचता ही रहता है, दूसरे का माल हड़पने के लिए वो चिंतन करता रहता है, आप ऊपर से वाणी से बोल रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे हैं कोई जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से अपने काम में चल रहा है, तो कर्म तो हो ही रहा है। जब मन वाणी और शरीर तीनों से कर्मों से हम छूटेंगे तभी बात बनती है। भगवान ने कहा कि जिसने केवल इंद्रिय रोक रखे हैं ना इंद्रिय बाहर के, लेकिन मन जिसका घूम रहा है उसको कहते हैं वंचक, कहते हैं ठग, भगवान कृष्ण कहते हो तो ठग है बहुत बड़ा, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, केवल उसने अब जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए बैठा है ना, वो तो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाकर के आंखें मीच करके बैठा है आदमी, मानो हम ही बैठे हैं, लोग तो कहेंगे बहुत समाधि लगा के बैठा है ना भजन में, लेकिन वो पता नहीं बैठा क्या क्या सोच रहा है, कोई हमारे जैसा तो ये सोच रहा है लोग हमारा मतलब बाद में हमारी प्रसिद्धि होगी कि हम बैठे हैं बहुत ध्यान से बैठते हैं, और कोई बैठा मतलब पड़ोसी का ही बुरा सोच रहा है वहां बैठा बैठा, और कोई यदि बैठा ही है कथा कीर्तन सुनने में तो वो विषय का आनंद ले रहा है, तो सभी वंचक हो गए, सभी ठग हो गए ना, दिखाने के लिए भले बैठे हैं, इसलिए मन वाणी और शरीर तीनों को रोकना, तीनों इसलिए कहा ना षड संपत्ति कही है ना, इंद्रियों का दमन और मन का शमन करना है तभी बात बनती है ना, केवल इंद्रियों का दमन करेंगे तो मन भटकता रहेगा तब भी बात नहीं बनेगी, इंद्रियों को भी रोकना है मन को भी रोकना है, इसलिए विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षता ये कही है ना, श्रवण मनन निदध्यासन फिर तत्व का संशोधन, ये आठ साधन इसलिए कहे हैं, इनसे बचेंगे तभी ये साधन हमारे में आएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए मानव वाणी और शरीर तीन प्रकार के कर्म होते हैं, उन तीनों कर्मों की आसक्ति छोड़नी है, मन को भी संयम करना है, शरीर को भी वश में करना है, और वाणी के ऊपर भी लगाम देना है, वाणी को भी एक वाणी में एक इंद्रिय है ना उसके ऊपर भी संयम करना नियंत्रण करना है ना, इसलिए कहते हैं कि अपने पहले हम आम किसी आदमी को बोलते हैं जो बहुत बोलने वाला होता है कि तुम अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगाओ, तुम ज्यादा बोलते हो, यही कहते हैं ना, ज्यादा बोलने वाले को बाचाल कहते हैं। एक स्वामी अखंडानंद महाराज जी करते हैं, मूकम करोति बाचालं पंगुम लंघेते गिरम। वो कहते हैं भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूकम करोति बाचालं, जो मूक होता गूंगा होता है जिसके बोलना नहीं आता, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो बाचाल हो जाता है। उन्होंने व्यंग से ऐसा अर्थ किया कि जो मूक होता है जिसको बोलना नहीं आता, जैसे शिब्बू था ना, शिब्बू क्या नाम उसका, शिब्बू जीवर था ना, जिसको गुरु हरकृष्ण महाराज ने जिसके सिर पर सोटी रखी थी, तो मूक है बाचाल, वो मूक था, वो कभी जिंदगी में बोला नहीं, महाराज ने छटी रखी उसके सिर ऊपर, तो बाचालम बाचाल हो गया, बाचाल मतलब वक्ता हो गया, धड़ाधड़ मतलब जो है उसने मतलब गीता के श्लोक भी स्वयं बोले, अर्थ भी स्वयं किए, उसको आता नहीं था, कभी जिंदगी में नहीं बोला, सिर्फ सोटी लगाई उसके सिर के ऊपर महाराज जी ने, तो मूक होए बाचाल, मूकम करोति बाचालम, गूंगे को बाचाल कर देता, मतलब अंधा धुंध बोलता है वो, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो। वैसे हम बहुत बोलने वाले को बाचाल कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो मूक को भी बाचाल कर देता, भाव अंधा धुंध बोलता है, वक्ता बन जाता है भगवान की कृपा हो जाए तो। लेकिन अच्छी बातें बोलने में यदि वो दुनिया भर की मतलब गलत बातें बोलता है तब उसको लोग कहते हैं तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा बोलते हो, गलत बोलते हो। इसलिए वाणी से बोलने का भी संयम होना चाहिए कि वाणी से हमने कौन सी बात करनी है। मन के द्वारा भी किसी की हिंसा होती है, वाणी से भी हिंसा होती है, शरीर से भी हिंसा होती है, तीनों से हम लोगों की हिंसा करते हैं। कई बार हम वाणी से ही किसी का इतना मन दुखा देते हैं कि उसका मरने जैसा हो जाता है। वो किसी को ऐसी बात बोल दी तो वो कहते थे और मारना क्या है, यही तो मारना है जो आपने मेरे को कह दिया, तो वाणी से ही उसका मरण हो गया कि नहीं, हमारे हमने हिंसा की उसकी वाणी से। तो तीन प्रकार के कर्म हैं, शरीर करके भी कर्म करते हैं हम, वाणी से और मन से, तीनों से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, ना शरीर से, ना वाणी से, ना मन से। यदि मन से भी आपने किसी को दुखी किया तो मानो उसको आपने उसकी मौत कर दी, उसकी मृत्यु हो गई। वाणी बोल करके किसी को ऐसा वाक्य बोला कड़ुआ कि उसका मन दुखी हो गया तो मानो आपने उसको मारने जैसा हो गया। इसलिए तीन प्रकार के जो कर्म है ना, वाण वाणी शरीर से, उन कर्मों से ज्ञानी परे हो जाता है। वह संचित कर्म है, प्रारब्ध है और क्रियमाण है, ये सभी उसके नहीं रहते। आगे बात आती है कि ज्ञान की सप्त भूमिका। आज की जो 13वीं कला है ना, उसमें है ज्ञान की सात भूमिका का वर्णन है। वशिष्ठ जी महाराज जी ने वैराग उसमें अपने योग वशिष्ठ में राम जी को उपदेश दिया, सप्त भूमिका वहां बताई उन्होंने। भूमिका मतलब अवस्था, ज्ञान की सात अवस्था सीढ़ियां है उसकी, मंजिल है ज्ञान की सात। तो ये कहते हैं कि वो जो सप्त भूमिका है उसका वर्णन कर रहे हैं आज की कला में। निज बोध की भूमि सो सप्त अहे, निज बोध आत्म बोध की सात भूमिका है। संसार में जो भी लोग आते हैं पूरी जिंदगी संसार के कार विहार में ही व्यतीत हो जाती है। कोई ऐसा होता है जो इस संसार की मतलब जो माया माया का सारा पसारा है ना, इसको छोड़ करके कोई होता है जो इससे निकलना चाहता है, जिसको गिलानी होती है, सबको नहीं होती। बात तो तभी बनेगी जब गिलानी होगी, इस जन्म में हो या किसी जन्म में हो, तब तक तो ये चक्र चलता ही रहेगा आने जाने का। जब तक हमारे को इस संसार के विषयों से गिलानी नहीं होती, गिलानी का मतलब होता है कि इससे मन हमारा दुखी नहीं होता, जब तक द्वेष नहीं होती इन विषयों में, इनसे दुखी होकर के हम भागना नहीं जब तक चाहते, तब तक बात माननी नहीं है। कोई कोई होता है जो भागता है, जैसे हम लोगों कोई रोग हो जाते हैं ना, तो उन रोगों की दवाई हम लेते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ये रोग डॉक्टर इससे जाए, उसके पास जाए, इसके पास जाए, छोटे छोटे मतलब डॉक्टरों के पास जाकर के उस रोग की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर है उसको भी उस रोग का कारण मालूम नहीं है। उसके पास आप जाएंगे तो रोग का कारण उसके पास मालूम नहीं है, वो दवाई जो देता है वो रोग को जड़ से थोड़ी खत्म करता है, उसके पास दवाई नहीं है जड़ से खत्म करने की, उसकी दवाई से आपका रोग दब जाता है, जाता नहीं है। यदि उस जड़ से हटा देते आपको कभी जिंदगी में बुखार नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हरेक साल हमारे को टाइफाइड होता है, उसी महीने में होता है, हरेक साल होता है उसी महीने में होता है, तो यदि डॉक्टर के पास इलाज होता तो दोबारा बुखार नहीं होना चाहिए। एक बार जब किसी को फोड़े निकल जाते हैं, फिंसी निकल जाती है, तो फिर उसी साल होती है दोबारा। इसका मतलब डॉक्टर के पास रोग का इलाज ही नहीं है, उसने कारण को नहीं खत्म किया, वो तो कार्य को हटाया उसने कारण। आप वृक्ष को यदि खत्म करना चाहो तो उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, आप उसको कितना भी छांगते जाओ तो वृक्ष खत्म नहीं होगा, उसकी आप टहनियां हर एक साल काटते फिर उतना ही हो जाता है वो, क्योंकि जड़ तो अभी बैठी हुई है ना। तो हम लोग इलाज करते हैं जो वो कार्य को देख के करते हैं, कारण को खत्म नहीं करना चाहते। तो कारण तो सबका अज्ञान है, अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हम मरे ना, हम बूढ़े ना हों, ये भी चाहते हैं कि बूढ़े ना हों, हम चाहते हैं कि नहीं, सभी चाहते हैं, आदमी भी चाहते हैं, स्त्रियां भी चाहती हैं, सब लोग चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, हर एक चाहता है कि मैं ऐसी कोशिश करूं कि मैं किसी को दिखूं ना कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। इसलिए बाल काले करने, बालों को बनाना, अपनी मतलब सर्जरी कराना, ये क्या है, यही कोशिश है ना कि हम बूढ़े ना हों। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कोई दावा करके कहे, पैसे की बर्बादी करते हैं, लोगों के सामने कोशिश करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना ठग हैं, ठग हैं कि नहीं हम लोग। जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत जवान हैं अभी और हमारा शरीर बहुत बढ़िया है, लेकिन धोखा अपने आप से कर रहे हैं, मालूम नहीं है अभी, इसको रोक नहीं सकेंगे हम, तब भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने ज्ञान का निरादर किया हमने, आदर नहीं किया। ज्ञान हमारे को अंदर से कहता है कि तुम बड़े हो जाओगे जितना मर्जी कोशिश करो, लेकिन अनादर करके फिर मुंह काला करते हैं, करते हैं कि नहीं। ज्ञान का अनादर किया, अंदर से आवाज आती है कि तुम कितने भी पैसे बर्बाद करो, बूढ़े तो हो गए अंत में, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, लोगों को तो दिखाएंगे जब तक है। तो ज्ञान का निरादर करके ऐसा कर रहे हैं ना। ज्ञान हमारा कैसा है, सच्चित आनंद है, ज्ञान तो हमारा सच्चित आनंद है, वही हमारा साथ है, वही चेत, वही आनंद है। उसको छोड़ करके हम अनात्म पदार्थ के साथ चिपके हुए है ना। तो हमने अपने आप को शरीर माना है, तभी तो इसको श्रृंगार के दिखाते हैं लोगों को। हम अपने आप को ये मानते हैं कि मैं ये हूं, मैं लोगों को दिखा रहा हूं, अपना आप दिखाना चाहते हैं ना, ये अपना आप नहीं है, ये तो झूठा मिथ्या है जिसको हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। जो अपना आप है वो उसके जितनी सुंदरता तो है ही नहीं कहीं, उसकी सुंदरता जो है उसकी सुंदरता का लेश मात्र पूरे संसार में है। जो हमारी सुंदरता है ना, पूरा संसार उसके लेश मात्र से इतना सुंदर लग रहा है। यदि हम अपने आप को देखें तो वो जो हमारी सुंदरता है उसका किसी सुंदरता से सदृशता नहीं हो सकती उसकी। इसलिए हम लोग सुंदर बनना चाहते किसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा। तो शरीर जो है ना, ये तो सभी ने देखा है कि शरीर को यदि राशन नहीं मिलता था, दो ही दिन में उसकी हालत कैसी हो जाती है। उसको धूप में रहना पड़ जाए दो ही दिन में, तो जितना मर्जी आप उसको श्रृंगार के चाहो काला हो जाएगा वो। और मरने के बाद तो आपने देखा ही है कि उसके पास नहीं जाना चाहता कोई। जिस शरीर को हम पूरी जिंदगी श्रृंगार श्रृंगार के लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोग उसके पास नहीं जाना चाहते, तो फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे भी इतना जो शरीर बेकार शरीर है उसको हम अपना आप मान के उसके ऊपर पैसे की बर्बादी करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो कैसे हम अपने स्वरूप को जानेंगे। इतनी ज्यादा शक्ति जब हमारी शरीर से है तो कैसे जानेंगे। थोड़ा भी हम तो अभी छूटे नहीं है स्थूल शरीर से, सूक्ष्म की तो बात बहुत दूर की है। जब आप स्थूल शरीर से छूट जाएंगे तो केवल शरीर का निर्वाह मात्र आप करेंगे, सुंदर बन 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 के या उसको श्रृंगार श्रृंगार के लोगों को नहीं दिखाता जो हो जाते हैं। इसलिए जो फकड़ हो जाते हैं, जो महात्मा संसार से ऊपर हो जाते हैं, वो क्यों नहीं कुछ भी करते? उनको तो नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों के तो जो साबुन है उनका कितना पैसा बर्बाद होता है, फिर भी सुंदर नहीं बन पाते। जितना अच्छा साबुन लगाएं, आठ पहर जब दो दिन ना नहाओ तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है, तो कैसा शरीर है ये? फिर अपना आप है हमारा, हमारा अपना आप कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता हमारी। यदि गुरु महाराज कहते हैं कि जी यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि सुंदर कौन होते हैं। दूसरों को महाराज ने सुंदर नहीं गिना, वो कहते हैं सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। गुरु महाराज कहते हैं उनको हम सुंदर मानते हैं, जो सत्संग में आकर के बैठते वो सुंदर हैं, बाकी कोई सुंदर नहीं है गुरु महाराज की दृष्टि में। भले कोई कितना भी मतलब सज धज के जाए, उसको महाराज कहते हैं सुंदर नहीं है, वो सब मलिन हैं। जो सत्संग में बैठते हैं वो सुंदर हैं, जहाँ जो प्रभु है वो सुंदर है। मेरा सुंदर कहो मिले कित गली, लिखा ना महाराज जी ने कि मेरा जो सुंदर है ना, सुंदर स्वामी जो मेरा मालिक है, वो बताओ मेरे किस गली में रहता है। मेरा सुंदर कहो मिले कित गली, मेरे को बताओ वो कहाँ मिलता है। उस सुंदर को मिलने के लिए ढूंढते हैं जो जिज्ञासु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं। इसलिए इसका मतलब है कोई सुंदर है ही नहीं, शरीर करके सुंदरता ही नहीं हो सकती। तो ज्ञान की सप्त भूमिका की बात आज चल रही है, जिसमें से पहली भूमिका है शोभिच्छा। सात भूमिका में सबसे पहली भूमिका है शोभिच्छा, शुभ इच्छा। इच्छा तो हम करते ही रहते हैं, इच्छाओं से भरे हुए हम लोग, एक क्षण में हमारी इच्छा का अभाव नहीं होता। तो गुरु महाराज मतलब ये लोग कहते हैं, महात्मा लोगों ने जो सप्त भूमिका लिखी, वो कहते हैं शुभ इच्छा। इच्छा तो आपको रहेगी पहले जब शुरू में, लेकिन शुभ इच्छा करो। जो बुरी इच्छाएं हैं ना उनका त्याग करके, शुभ इच्छा क्या है? संसार से छूटने की इच्छा। जैसे कहते हैं ना तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतह कर संगा। उन्होंने नवदा भक्ति का जहां पर वर्णन किया, तो प्रथम भक्ति संतह कर संगा, पहली भक्ति ये है। वो कहते हैं कि संतों का सत्संग करो, महात्माओं का संग करो, ये पहली भक्ति है। तो सत्संग में जाना ही प्रथम भक्ति है। इसी प्रकार ये कहते हैं सप्त भूमिका है ना, उसमें से पहली भूमिका है शोभिच्छा। भाव संसार के विषयों से दुखी हो करके इस संसार भवजल से तापार होने की इच्छा जब होती है, इच्छा करना किसी के हजारों में से किसी में होती है, सबको नहीं होती, कोई एक होते हैं हजारों में से जिसको इस संसार से छूटने की इच्छा होती है। तो जब इच्छा होती है किसी के अंदर उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं शोभिच्छा। संसार की इच्छा कोई शुभ इच्छा नहीं है, कूड़ा करकट को इकट्ठा करने की इच्छा कोई शुभ इच्छा नहीं हो सकती ना। ये संसार क्या है, ये कूड़ है ना, कूड़ मतलब झूठा। इसकी जो इच्छा करते हैं वो शुभ इच्छा नहीं मानी जाती। फासन की विद सब को जाने, छूटन की एक कोई। फंसने की तो जो विधियां है ना सबको आती है, हम लोगों को फंसने की तो इतने तरीके आते हैं कि छोड़ मत, कोई गिनती नहीं है। जितने हम लोग फंसने के तरीके जानते हैं कोई जानता ही नहीं है, पक्षी पशु भी नहीं जानते होंगे इतने जितने हम जानते हैं। फंसने के हमारे कोई बहुत तरीके आते हैं, हर प्रकार हम फंसना ही चाहते हैं। जितना भी हम बढ़ाते जाते हैं ना अपने आप का पसारा, वो सब फंसने का ही तो तरीका है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सहस खट्टे लाख को उठ धावे, किसी के पास हजार रुपया होता है तो उसकी तृप्ति थोड़ा होती है, अभी उसको होता कि और फंस जाए अच्छी तरह। तो वह कहता है कि मेरी आमदन अब हजार से बात नहीं बनती, लाख हो जाए तो अच्छा है। तो लाख जब हो जाता तब भी कहाँ रुकता है, सहस खटे लाख को उठ धावे तृप्त ना आवे, लाख भी उसके पास आ जाए तो महाराज जी कहते हैं तृप्ति नहीं हुई अभी उसकी, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। वो तो कहते हैं मांगे दमा दम, वो हर दम दम दे विच माया जो है ना मांगता रहता है कि अभी बात बनी नहीं है, क्योंकि फासन की विधि उसको आ रही ना कि और फंस जाऊं और फंस जाऊं, तो उसकी तृप्ति होती नहीं है। बड़े बड़े राजन और भूमन कहते हैं छोटे मोटे की मजदूर की बात नहीं है, बड़े बड़े जो राजा लोग ना चक्रवर्ती सम्राट जैसे सिकंदर जैसे लोग रावण जैसे लोग, उनको क्या हुआ। सिकंदर कहता कि पूरे वर्ल्ड को पूरे संसार को मैं अपने बस में करूंगा, तब उसी इसलिए तो पूछा था ना महात्मा ने कि तुम क्या करोगे इतने लोगों को जीत के करोगे क्या, तो कहता शांति से अपने घर में बैठूंगा। तो कहते तुम मूर्ख नहीं हो क्या, जो काम तुम इतने लोगों का संहार करके करना चाहते हो। महात्मा जब मिले तो महात्मा रेते पर लेटे हुए थे, उन्हें पूछा कहाँ जा रहे हो, कहते जा रहा हूं हिंदुस्तान को विजय करने, कहते क्या करोगे, कहते फिर इसको विजय करेंगे उसको विजय करेंगे करके कहते अंत में क्या करोगे, कहते घर में बैठ के आनंद लूंगा। तो कहते तुम मूर्ख हो, जिस काम को तुम इतने लोगों को मार करके करना चाहते हो मैं तो अभी कर रहा हूं, यही तो करोगे ना जो मैं कर रहा हूं, लेटे पर रहता लेटे पर लेटा हुआ हूं ना, सोगी तो ले रहा हूं, तो तुम्हारे जितना मूर्ख कौन हो सकता है। जो काम मतलब इतना करने के बाद हम करना क्या चाहते हैं, हम ही जो पसारा बढ़ा रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, सुख, सुख की इच्छा से तो सब कुछ करते हैं ना। जब एक कमरा होता है तब कहते हैं अभी बात नहीं बनी, और एक कमरा बनाएंगे तो आने जाने वाले को बैठने के लिए बन जाएगा, उससे भी बात नहीं बनती, तो कितने कमरे बढ़ाते जाते किस लिए, सुख का मतलब आनंद लेने के लिए बढ़ाते हैं ना, तो आनंद फिर भी नहीं मिलता। कोठे मंडप माड़िया कुछ किसने बढ़िया बढ़िया माड़िया महल भी किसी ने बना लिए ना, तो कहते सुख तो किसी को नहीं मिला, वो सारे दे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए। कबीर साहब जी ने कहा भी कोठे मंडप महल माड़िया उसारे दे बनाते बनाते चले गए, क्या किया उन्होंने, कूड़ा सौदा कर गए। जिन्होंने इतना कुर किया कहते झूठा ही सौदा किया उन्होंने, कबीर जी कहते कुछ नहीं किया, इतने इतने महल बनाने के बाद चले गए तो कूड़ा सौदा कर गए, झूठा ही खरीद के सौदा छोड़ गए, अंत में क्या हुआ गोरी आए पे, इतना झूठा सौदा खरीद के गोरी कहते कब्र में आकर के गिरे पड़े हैं, कोई पूछता नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ ना अंत में उनको, 3.5 हाथ तेरी सीमा। कबीर जी कहते हैं घनीता 4.25, किसी को 3.5 हाथ जगह मिलती है, बहुत ज्यादा लंबा हो तो 4.25, इससे ज्यादा जगह कहते तेरे को मिलनी नहीं है, कितना भी तुम महल माड़ी बना लो आखिर तेरे को 3.5 हाथ जगह पर दबा देंगे लोग और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे इतना इकट्ठा करने का फायदा क्या हो, जब 3.5 हाथ ही हमारे को मिलना है, हमारे को क्या शरीर को मिलना है, तो जितनी हमारी प्रवृत्ति है ना पूरी सुख के लिए है, जितना हम फंसते जाते हैं सुख के लिए फंसते हैं ना, तो यदि सुख असली फिर भी हमारे को मिलता नहीं है। बड़े बड़े राजन और भूमन त्राकी त्रिशन न बूझी, लपट रहे माया संग माते लोचन कशु न सूझी, उनको नेत्रों से कुछ भी पता नहीं चला, माया के साथ बहुत घूमे विख्या में किन्हीं तृप्त न पाई, विषयों में किसी की तृप्ति नहीं होती कभी भी। तो संसार जितना है जो विषय रूप है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसको आनंद तभी आएगा जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो इस संसार में रहते हुए आपको सुख मिल जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी भागने की, है कहाँ जो ये जो सुख हम चाहते हैं और ढूंढते कहाँ है कहाँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, तुम वन में कहाँ ढूंढ रहे हो, वन में सुख नहीं है कभी भी, वन में पेख्यो तृण में पेख्यो रे पेख्यो उदासाए, कहते हैं ना उदासी हो करके वन में पेख्यो, जा करके देखा कि हो सकता वन में सुख हो तृण में पेख्यो, लेकिन कहीं भी नहीं मिला, सब जगह घूम के देख लिया सुख नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। सब कुछ तो तेरे घर में है, तुम कहां बाहर ढूंढते हो। जंगल जंगल क्या भवे है, वन कंडा मोड़े है, वसी रब है अलिये, जंगल क्या ढूंढे। कबीर साहब कहते कहां घूम रहे हो, जंगल में कहीं नहीं है। कबीर साहब कहते अब जंगल की बात ही छोड़ दो, हमने तो देख देख जग ढूंढया कहूं ना पाया ठौर। तुम तो एक जंगल में गए होंगे ना, वो कहते हमने पूरा संसार ही घूम लिया, देख देख जग ढूंढया, पूरा संसार हमने देख दिया कहूं ना पायो ठौर, कहीं भी नहीं, हमारे अंदर ही था। बाद में हमारे को पता चला कि बाहर कहीं नहीं है, हमने पूरा संसार ढूंढ के कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर। वो कहते जिसको ढूंढते फिरते थे ना, उसको वहीं पाया। इसलिए स्वामी जी महाराज नहीं बोलते कि खुद ही पर्दा है निर्मल खुदा और बंदा में, अगर खुद ही ना जाए तो बंदा खुदा नहीं होता, नहीं ना होता खुदा, खुद ही नहीं। गुरु महाराज जी लिखते हैं खुद ही मिटी तब सुख पाए, लिखते हैं ना गुरु महाराज पंक्ति लिखते हैं, खुद ही मिटी तब सुख भय मनतन भय अरोग। जब खुदी खुदी मतलब अपना आप अहम जो जब मिट गया तो मनतन भय अरोग, मानवीय रोग हो गया और तानवीय रोग हो गया, खुदी के कारण ही हो रहा था। तो खुदी ही पर्दा है, वो कहते आपके और अल्लाह के बीच में, प्रभु के बीच में खुदी जो अपना आपका अहम है ना, यही पर्दा है। जब ये मिट जाएगा तो मानतन भय अरोग नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। जो सारे संसार का पूज्य है ना, वो कह रहे मेरे को दृष्टि में आ गया खुद ही हमारी जब मिट गई। तो इसको मिटाने के लिए शुभ इच्छा है, सबसे पहले शुभ इच्छा भाव मुक्त होने की इच्छा, संसार से छूटने की इच्छा, ये पहली भूमिका है। ये हजारों में से किसी किसी के अंदर आती है। जब ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है तब वह जाता है गुरुओं के पास, क्योंकि तस्मिन विज्ञाते सर्वितम विज्ञातम भवती, ये कहती है श्रुति। वो जाकर के पूछता है ना कि भगवान ऐसी क्या वस्तु है जिसको जानने से सबको जाना जाता है, तभी वह पूछता है जाकर के कि मेरे को वो बताइए। कस्मिन्नु भगवन विज्ञाते, किसको जानने से ये सारा कुछ जाना जाता है, किसको जानने से कुछ जानना शेष नहीं रहता, वो मेरे को बताओ। वो ही तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान ले हो मन माही, उसको जानने से कुछ नहीं शेष रहता, प्रीतम को जान लो बस, और कुछ भी नहीं है। प्रियतम को जान लो आप, ना प्रिय को जानो ना प्रियतर को जानो, प्रियतम को जानो। प्रिय तो आपने देखे ही हैं, प्रियतर भी आपने देखे हैं, लेकिन प्रियतम जान ले हो मन माही। अपने सुख ही से सब लागे, को काहू को नाही, कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जानने योग्य वस्तु क्या है, वो याज्ञवल्क जी मैत्रेयी को कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, ऐ मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने के योग्य है। मानतव्यो निधिध्यासितव्यो, आत्मा का ही मनन करना चाहिए, आत्मा का निध्यासन करना चाहिए। तो आत्मा ही देखने के भाव साक्षात करने के योग्य है आत्मा। संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने के योग्य है तो आत्मा, और जितनी संसार की वस्तुएं हम प्राप्त करना चाहते हैं जब कर चुके हैं वो क्या है, अवर काज तेरे कित न काम। तो हम संसार के काम कर रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं, जितना भी काम हम कर रहे हैं वो महाराज कहते तेरे काम ही नहीं है किसी भी। हम कहते हैं कि बिना काम किए तो हमारा काम ही नहीं चलता, कहते हैं ना महाराज जी आपके पास बैठे रहेंगे तो घर का काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे मिलेगी। ये तो कहते हैं कि आप कहते हैं जहां आओ हम काम नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। महाराज कहते हैं अवर काज तेरे कितने ना काम, वो तो किसी के काम के नहीं, तेरे काम के नहीं है वो। हम बच्चों के काम के तो जरूर हैं, पैसा कमाओगे तो तुम लोगों को तो अच्छा बन बन दिखाओगे, लोगों के सामने तो आपका नाक बच जाएगा, लेकिन वो तेरे के काम, तेरे काम के नहीं हो, लोगों के काम के तो अवश्य है, लोगों के सामने तेरी प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन तेरे अपने काम के नहीं है वो, कि तेरा कुछ सवार देंगे ऐसा नहीं है। वहां से भी हम लोग हिसाब नहीं लगाते कि मेरा क्यों नहीं वो कुछ सवारते, शरीर का तो सवार ही रहे हैं, जब भी हम काम करके पैसा कमा रहे हैं तो शरीर का तो काम सवार रहा है, वो खाने के लिए मिल रहा है, शरीर को अच्छा कपड़ा मिल रहा है, तो मारे ही कहते तेरे काम के ही नहीं वो। इसलिए वहां पर सोचना पड़ता है कि वो शरीर के काम आने वाले हैं, शरीर से जो करेंगे वो शरीर के काम आएगा या शरीर के संबंधियों का काम आएगा। हमारा जो एक काम है ना, जो मुक्ति रूपी जो काम है, उसके काम में नहीं आएगा। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, एक कार्य है ना जो तेरा मुक्ति रूपी कार्य है, वो ना सरे, वो नहीं सरेगा जब तक मेरी मेरी करोगे। मेरी मेरी करने से वो नहीं कार्य सरेगा, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवारे आए। जब आप मेरी मेरी आपकी मिट जाएगी तब आपका मुक्ति रूपी कार्य प्रभु सिद्ध करेंगे। अबर काज मतलब झूठे संसार के जो कार्य हैं तेरे कितना काम, वो तेरे किसी काम के कहां, व्यवहार को छोड़ के तेरे काम में के नहीं है, व्यवहार में तो तेरे काम में आएंगे वो, लेकिन अंत में जब तुम पश्चाताप करोगे उस समय तेरे काम के नहीं है। शरीर के रहते हुए मुक्ति चाहिए ना, शरीर के मरने के बाद कभी कोई मुक्त नहीं हुआ, वो तो विदेह मुक्त होता है। शरीर के मरने के बाद जब ज्ञानी है वो विदेह मुक्त होते हैं, मुक्ति तो शरीर के रहते होती है, शरीर के बाद में मुक्ति किसी की नहीं होती। कहते हैं ना कि मरण मुक्त किन पाई, किसने पाई है मरने के बाद, देखा किसने कि मैं मुक्त हुआ हूं, मुक्त को इसी शरीर में होना है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि इस शरीर में जो आप काम करते हैं व्यवहार का आपका कार्य चल सकता है, उससे पारमार्थ का नहीं चलेगा। इसलिए कहते साध संगत भज केवल नाम, ये है तेरे काम का, दूसरे कार्य भी करते रहो लेकिन उसके साथ साथ में जो आपका विशेष कार्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं आपकी मदद तो हम जरूर करेंगे लेकिन पहले अपना काम हमारे को करने दो, जितना समय मिलेगा उसके वो समय हम लगा सकते हैं आपकी सेवा में, लेकिन पहले हम अपना काम करेंगे। तो संसार की सेवा में तो हम लगाना चाहिए अपने आप को, लेकिन पहले अपना काम सिद्ध करो तभी तो संसार की सेवा में लगे। हम लोग पूरे लोगों के चक्कर में, पालने पलाने में चक्कर में तो लगे हुए हैं लेकिन अपने बारे कभी नहीं सोचा कि हमारा क्या बनेगा। पूरे संसार के विषय में सोचते रहते हैं, अपने बारे कभी नहीं सोचा किसी ने कि मैं कौन हूं। दूसरे के लिए सोचते ये कौन है, ये कहां से आया, इसका क्या परिचय है, इसको कैसे पकड़ूं, उसको कैसे पकड़ूं, अपने आप को थोड़ी देखा कभी भी मैं कौन हूं, ये तो कभी प्रश्न ही नहीं किया हम लोगों ने अपने आप से कि मैं कौन हूं। जब भी प्रश्न करते हैं तुम कौन हो, यही प्रश्न करते हैं ना, सारे लोगों से परिचय पूछते रहते हैं लेकिन हमारा अपना अपना परिचय कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। जब कोई पूछता तब भी झूठा ही बताते हैं कि मैं राम सिंह हूं, मैं श्याम सिंह हूं, तब भी अपना आप नहीं बताते कि मैं कौन हूं, क्योंकि मालूम ही नहीं है, कभी अपने आप से प्रश्न करके पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। पहले अपने आप को जानने की इच्छा हो, शुभ इच्छा, इसी को कहते हैं शुभ इच्छा, कि अपने आप को जानने की इच्छा, संसार को जानने की इच्छा शुभ इच्छा नहीं है, जहां तो प्रभु को जानने की या अपने आप को जानने की इच्छा का नाम है शुभ इच्छा। किसी किसी को होती है, जिसको होती है उसके पता नहीं कितने जन्म के पुण्य का फल होता है, हरेक को नहीं होती। अपने आप को जानने की इच्छा हरेक आदमी को नहीं होती, जिसको हो जाती है उसके पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब वो इस संसार से छूटना चाहता है। उसको ये संसार जो है ना विषय लगते हैं, उसको विष लगता है, विष की तरह लगता है। जब कोई आदमी दुखी होता है ना, अत्यंत दुखी होता है, तब वो कहता है कि मेरा ऑपरेशन करो, नहीं तो पहले कभी नहीं कहता। सर्जरी कराना कोई नहीं चाहता, जब उसको इच्छा ही खत्म हो जाती है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं, तब कहता है सर्जरी करो मेरी, तब कहता है ऑपरेशन करो, नहीं तो छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाना छोड़ता नहीं कभी भी। जब बिल्कुल ही उसको होता कि अब नहीं बचेंगे, तब कहता कि अब सर्जरी करो। यही तो हमारी कहते, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आपको बिल्कुल इच्छा नहीं ना बचेगी संसार के अंदर विषय भोगते हुए, अब सुख कहीं नहीं है, जब इतना दुखी हो जाओगे संसार से, जैसे ऑपरेशन वाला आदमी होता है ना, तुरंत कहता कि मेरा ऑपरेशन करो, तब कहते आप गुरुओं के पास जाओगे तब ऑपरेशन होगा आपका। उस बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन के बिना उसके वो कहता कोई आपका इलाज नहीं है। हम छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, ये जहां से सुख मिल जाए, जहां से मिल जाए, और जहां जहां से जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, किसी किसी के साथ हमारी गांठ साठ क्यों करते हैं हम सुख के लिए? वो सब छोटे छोटे डॉक्टर हैं ना, सुख तो वहां से मिलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं ना, जैसे दवाई ली तो थोड़ा सा काम हो गया, फिर कहते कोई बात नहीं अभी ऑपरेशन रहने दो, अभी काम चल रहा है, फिर थोड़ा सा हुआ तो दूसरे के पास। यही हमारा हालत है ना, कि थोड़ा सा सुख किसी से मिला तो फिर दूसरे के पास चले गए, या फिर अंत में दुख इतना कई बार होता है ना कि अब कहीं से कोई आशा नहीं रहती, तब जाते हैं महात्माओं के पास कि महाराज अब तो हम सब जा घूम के आ गए, कृपा करो। तो महात्मा तो ऑपरेशन ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत सर्जन है ना, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं। वो आपको जो सुख आप चाहते हैं छोटा मोटा, वो कहते हैं आप और कहीं से ले लो दवाई, यदि आपको मिलती हो तो। हम तो ऑपरेशन ही करेंगे जब करेंगे, तो फिर जब आदमी ऑपरेशन की स्थिति में पहुंच जाए तो ऑपरेशन हो जाता है फिर। हमने पहले भी आपको बताया था ना, महात्मा है हमारे बनारस में, उनसे हमने कहा था, वो साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, हमारे गुरु भाई हैं वो। उन्होंने कहा महाराज हमारे को कुछ बताओ, हमारे को कुछ पढ़ाओ। वो कहते थे पहले पंडितों के पास पढ़ लो जितना पढ़ना है, यही उत्तर था उनका। कहते पंचमी सप्तमी लगा लो जितनी लगानी है, पहले पंडितों के पास पढ़ लो पहले। कई बार हमने कहा, वो कहते हमारे पास पढ़ने की अभी आपसे योग्यता नहीं, आपने अभी आप ऑपरेशन वाली स्थिति में नहीं पहुंचे। यही कहा था उन्होंने कि अभी आप और डॉक्टरों के पास चले जो जितना जाना है, जब ऑपरेशन की स्थिति में पहुंच जाएंगे तब हम ऑपरेशन कर देंगे आपका। तो बात हमारी भी यही है कि अभी हमारी ऑपरेशन वाली स्थिति बनी नहीं है, यहां से सुख वहां से सुख यहां से सुख। जब हम उस सदीवी सुख को चाहेंगे ना, अविनाशी सुख को चाहेंगे, तब हम गुरु चरणों में जाएंगे। सब इच्छा होगी हमारे को, सब इच्छा मतलब छूटने की, कि अब और कोई नहीं, केवल संसार से छूटना है, खा करके हंडा करके हमने बहुत देख लिया, अब केवल छूटना है। उसको कहते हैं सब इच्छा। ऐसी सब इच्छा जब होती है ना, तब हम गुरुओं के पास जाते हैं। तो गुरुओं के पास जब जाएंगे तब वहां से हमारे को उस सब इच्छा के अनुसार गुरु लोग को उपदेश करेंगे, तभी हमारा आगे का मार्ग मिलेगा। ये पहली जो भूमिका है सब इच्छा। अभी छह भूमिका और हैं, तो उनका धीरे धीरे विचार करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।